अध्याय चौथा। महीने का अंत आने पर मैं अपना उपवास खोलने के लिए उतावला हो उठा। स्वर्गाश्रम में चोटी वाला भोजनालय के निकट एक मूंगफली वाले का स्मरण कर मैं वहां एक रुपया लेकर पहुंचा, जो मुझे एक तीर्थयात्री ने भिक्षा में दिया था। ये लगभग 12 अमेरिकी सेंट के बराबर था और मैं इसके बदले में मुट्ठी भर मूंगफलियां की आशा लगाए हुआ था। लेकिन जब दुकानदार ने एक रुपया देखा तो उसकी आंखें खिल उठीं और उसने तुरंत कुछ पुराने अखबारों को जोड़कर एक बड़ा लिफाफा बनाया और उसे मूंगफलियों से भर दिया। आज मैं भर पेट खाऊंगा, मैं प्रसन्नचित्त हो जंगल के रास्ते वापस अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। जंगल के भीतर प्रविष्ट होते ही एक विशाल भूरा बंदर मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया। एक कस्टम अधिकारी की भांति उसने मेरा रास्ता रोक लिया, गुर्राकर अपने नुकीले दांत दिखलाए, अपनी छोटी पैनी एवं हरी आंखों से अपने शिकार का मुआयना करने लगा। उसका हट्टा-कट्टा शरीर घने भूरे बालों से ढका था, गुलाबी चेहरे पर पुरानी लड़ाइयों के दाग थे और गुलाबी अंगुलियां मुड़ी हुई थी। चमकीले गुलाबी नितंबों वाला ये वानर अचानक मुझ पर झपटा। एक ही झपट्टे में उसने मूंगफलियों का लिफाफा छीना और तेजी से मेरे छाती पर लात मारते हुए पलटकर भाग गया। हाँफता हुआ मैं लड़खड़ाया और कई कदम पीछे ढकलता चला गया। जब मैंने स्वयं को संभाला तो ये देखकर मुस्कुरा उठा कि वो मेरा पूरा लिफाफा लेकर एक क्षण में ही जंगल में अदृश्य हो गया था। फिर भी छीना झपटी के बीच कुछ मूंगफलियां नीचे गिर गई थी। मैंने सोचा ठीक है, अपना उपवास खोलने के लिए इनसे ही काम चलाना होगा। जैसे ही मैं उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका, पेड़ से दूसरा बंदर कूदा और सभी मूंगफलियों को चून कर ले उड़ा। मेरे लिए उसने एक भी नहीं छोड़ी। जब मैं रात बिताने अपनी गुफा की ओर चला तो मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा। मैंने सोचा आध्यात्मिक अनुभवों के खजाने के सामने भौतिक उपलब्धियां उन मूंगफलियों के समान हैं। इन मूंगफलियों के कुछ दाने प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, रोलते हैं और मर जाते हैं। मुट्ठी भर मूंगफलियों के लिए वे लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन किसी भी क्षण कोई बंदर दूसरे व्यक्ति का लोभ अथवा काल की अपरिहार्य गति हमारी संजो कर रखी मूंगफलियों को लूट कर ले जा सकते हैं। अगले दिन ऋषिकेश में पैदल चलते चलते मैं गंगा तट के अंत तक पहुंच गया। एक पर्वत पर चढ़कर मैं शंकराचार्य नगर पहुंचा, जहां महर्षि महेश योगी का आश्रम था। आश्रम में मिट्टी की पगडंडियां वहां लगे प्राचीन वृक्षों, महकती झाड़ियों और फूलों से भरी लताओं के बीच से होती हुई ध्यान साधना हेतु बनाई गई अनोखी झोपड़ियों तक जाती थी। आगे बढ़कर मैं एक बड़े पर्वत के किनारे पहुंचा, जहां से गंगा नदी का भव्य दृश्य दिखाई दे रहा था। उस खड़े पहाड़ के कोने पर महर्षि का एक साधारण सा घर था। उसमें प्रवेश कर मैंने स्वयं को फूलों से सुशोभित वेदी वाले एक कमरे में पाया। उस पर महर्षि के गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती का चित्र था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, लंबे सफ़ेद बालों को माथे से पीछे की ओर कंघी किया गया था और वे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। वे एक विख्यात योगी और लगभग 150 वर्षों में हिमालय के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की गद्दी पाने वाले पहले व्यक्ति थे। सुबह शाम आश्रम के निवासी महर्षि के पूजा कक्ष में एकत्रित होकर मंत्रोच्चारण करते और आरती के पश्चात अंत में सामूहिक ध्यान करते। किसी ने मुझे बताया कि महर्षि जी तहखाने में ध्यान करना पसंद करते थे, एक अंधेरी गुफा जिसमें कुछ ही लोग बैठ सकते थे। वो शीतल शांत तहखाना ध्यान के लिए मेरा भी प्रिय स्थान बन गया। यहां मुझे महर्षि की उपस्थिति का विशेष भान होता था। और एक गहरी शांति और सुकून मेरे तन मन में रम जाता था। महर्षि का जन्म 1917 में मध्य भारत में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। 13 वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती के सचिव के रूप में सेवा की। इस जगत से प्रस्थान से पूर्व उनके गुरु ने उन्हें आदेश किया, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसमें गृहस्थों के लिए उपयोगी तकनीकें भी हैं जिन्हें या तो भुला दिया गया है या जिनकी सदियों से गलत व्याख्या होती आ रही है। धन के लिए यहां वहां विचरण करने का विचार मत करो, घबराओ मत और अकेले रहने से डरो मत। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बेचैन मत होना, सेवा आरंभ करो और सब कुछ स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। अपने मिशन की तैयारी के लिए महर्षि ने 2 वर्षों तक उत्तरकाशी की गुफाओं में एकाकी ध्यान साधना की। फिर 1955 में उन्होंने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखलाना आरंभ किया और ऋषिकेश में अपना आश्रम स्थापित किया। 1957 से उन्होंने संपूर्ण विश्व का दौरा करना प्रारंभ किया। महर्षि महेश योगी ने सिखाया कि टीएम का अभ्यास करने से हमारी चेतना और अधिक सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाती है। हमारा लक्ष्य ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जो हमारी साधारणतः जागृत सुप्त और सुसुप्त अवस्था से भी कभी अधिक सूक्ष्म है। ध्यान करना ऐसी चेतना का अनुभव करना है जो मन और अहंकार को सूक्ष्म अस्तित्व से परे है, क्योंकि शुद्ध अस्तित्व की इस मुक्तावस्था में ही हम अपने शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। महर्षि विशेष रूप से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और योग के प्राचीन विज्ञान में सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष थे। यद्यपि वहां मेरे निवास के दौरान महर्षि विदेश में थे, उनकी प्रेरणा से मैंने वहां उनकी 2 पुस्तकें द साइंस ऑफ बीइंग और आर्ट ऑफ लिविंग तथा भगवद गीता के 6 अध्याय पढ़े। शंकराचार्य नगर में हर शाम में मैं बेविन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन साधु के साथ समय व्यतीत करता जो आश्रम का प्रमुख था और महर्षि के प्रिय शिष्यों में से एक था। हम दोनों उसकी कुटी में मिलते जहां हम महर्षि की रील टू रील टेप सुनते और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते। मुझे याद है वहां मैंने महर्षि को ऊंचे स्वर में और अक्सर हंसते हुए ये कहते सुना, यहां हम मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के झूठे वायदों की नहीं अपितु इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद के सकारात्मक अनुभव की बातें करते हैं। जिसकी इच्छा हो वो आ सकता है। उनकी तकनीक सरल थी, सुबह और शाम केवल 15 से 20 मिनट का सहज ध्यान और जीवन शैली में परिवर्तन तथा धार्मिक तथा दार्शनिक बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने सिखाया कि जीवन मूल रूप से आनंद से भरा है, हम मूल रूप से आनंदमय जीव हैं। उनके अनुसार टीएम हमारे मन द्वारा आनंद खोजने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को हमारे अस्तित्व के आंतरिक आनंद और सहजता से मोड़कर हमें आनंदमय बना सकता है। कभी कभी वे इस समझाते हुए कहते, जड़ों में पानी दो और फलों का आनंद उठाओ। सर्दी का मौसम था, चारों ओर शांति छाई थी। उस समय बेविन और मेरे अतिरिक्त शायद ही कोई अन्य विदेशी आश्रम में था। बेविन ने मुझे बताया कि कैसे केवल 2 वर्ष पूर्व बीटल्स डोनोवेन, मिया फेरो और उसकी बहन प्रूडेंस यहां आकर महर्षि के साथ रहे थे। तब से योग और ध्यान साधना का प्रभाव पूरे जगत में फैल रहा था। उस पवित्र वन में ध्यान करना और उस पर्वत के शिखर पर सोने का सुख प्राप्त करना जीवन के अमूल्य उपहार थे। 3 अवसरों पर महर्षि महेश योगी मेरे सपनों में आए। वे हाथ में फूल लिए पालथी मारे बैठे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बाल उनके लहराते सफ़ेद चोंगों से एकाकार हो रहे थे। उनका गोल चेहरा आभामंडित था। यद्यपि वे छोटे कदकाठी के थे, तथापि उनकी उपस्थिति असीम थी। उनकी कोमल किंतु पैनी नज़र मानो मुझे शाश्वत शांति के लोक में आने का निमंत्रण दे रही थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर आंखें बंद की और अदृश्य हो गए। कुछ समय पश्चात मैं अपनी जंगली गुफा के एकांत में लौट आया। वहां लौटने के पश्चात मैंने खुद से पूछा कि क्यों मैंने महर्षि के आश्रम को छोड़ा। वहां तो मुझे केवल ज्ञानवर्धक अनुभव ही मिल रहे थे। निस्संदेह महर्षि की शक्ति प्रबल एवं प्रेममयी थी और वहां सभी बहुत दयालु थे। मैं क्यों ऐसे इधर उधर भटक रहा हूं? आने वाले महीनों में मैं बार बार स्वयं से यही प्रश्न पूछने वाला था। हर बार मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता कि किसी एक गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होने से पूर्व मैं विविध पंथों और शिक्षकों से ज्ञानार्जन की इच्छा रखता था। मैंने विचार किया, जब तक मुझे एक पथ और एक गुरु को जीवन समर्पित करने की श्रद्धा प्राप्त नहीं हो जाती, मैं भ्रमण करता रहूंगा। एक दिन प्रातः मैं जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। अचानक एक साधु अपने चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान लिए मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ और मुझे आगे बढ़ने से रोकने लगा। उसकी भींची हुई छोटी आंखें मेरी आंखों में घूरने लगी। छोटी नाक, चपटा चेहरा, छोटे बाल और ताम्रवर्णी, यह साधु कौन था और मुझसे क्या चाहता था? मैं पशोपेश में पड़ गया। मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है, उसने कहा, किंतु तुम मुझे नहीं पहचानते। आश्चर्यचकित किंतु चुपचाप मैं सोचने लगा कि अभी आगे क्या होने वाला है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। निकट ही एक गुफा में सबसे महान संत रहते हैं। मेरा मिशन तुम्हें उन तक पहुंचाना है। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने पूछा। तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं, बस मेरे पीछे चले आओ। हैरान, मैं उस साधु के पीछे चलने लगा। उसने मुझे बताया कि वो नेपाल का रहने वाला है। हम जंगल की गहराइयों में एक झरने के किनारे घास भरे मार्ग पर चलने लगे। सूखी लकड़ियों और पत्तों को पैरों से रौंदते हुए झाड़ियों के बीच से बढ़ते गए। हमारे बाईं ओर की झाड़ियां में एक जंगली सुअर भागता हुआ नजर आया। कुछ देर में हम एक खुले स्थान पर आए, जहां आकर उस व्यक्ति ने एक पर्वत शिखर की ओर संकेत किया। वहां मुझे तीन गुफाएं दिखाई दी, जिनके प्रवेश द्वार धुएं से काले हो गए थे। वो साधु मुझे पत्थर की छोटी सीढ़ियों से ऊपर ले गया, जो सीधी चट्टान में तराशे हुए 30 फुट लंबे जीने जैसी थी। ऊपर पहुंचकर हम एक गुफा में गए, जहां धुएं के बादलों से हमारी आंखें जलने लगीं। वहां सीधी कमर किए पद्मासन में एक अद्भुत व्यक्ति विराजमान थे। उनकी मोटी लटकती जटाएं भूमि पर अनेक फुट तक फैली थी। उनका बलशाली शरीर लगभग 6 फुट ऊंचा था और उन्होंने कमर पर केवल एक रस्सी और कौपीन पहना था। उनके नेत्र ध्यानमग्न थे। प्रतीत होता था मानो वे ऐसे जगत में प्रवेश कर गए थे जो समय और स्थान से परे था। एक अवर्णनीय शांतिमय तेज उनकी स्थिर देह से प्रस्फुटित हो रहा था। ये थे महावीरदास टाट वाले बाबा। हम धैर्यपूर्वक वहां बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। यज्ञ में जलती लकड़ी की गंध उस प्राचीन गुफा की सौंधी सुगंध में रच बस गई थी। पवित्र संस्कृत ग्रंथ पत्थर के एक खाने में रखे थे। उनका वस्त्र, जो पुराने टाट की एक ओढ़नी मात्र था, तह करके उनके पास रखा था। उस नेपाली साधु ने मुझे बताया कि बाबा जी अक्सर पूरी रात ध्यान साधना किया करते हैं। उसने कहा, हमें धीरज से प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वे अपनी समाधि से बाहर नहीं आ जाते। अंत में बाबा जी ने अपनी काली चमकती आंखें खोली और एक लेजर किरण की तीव्रता के साथ मेरी आंखों में घूरा। वो नेपाली साधु हमारे अनुवादक के रूप में काम करने लगा। प्रबल आवाज में बाबा कहने लगे, भगवान एक हैं और सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। अपनी हथेली उठाकर उन्होंने अपनी तर्जनी को अंगूठे से छुआ। सारी पीड़ाओं की जड़ भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना है। उसे माया अथवा भ्रम कहते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारोगे तो वे स्वयं को तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देंगे। भगवान की हृदय की आंतरिक भावना को देखते हैं, ऊपरीपन को नहीं। हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। तुम जीवन भर जंगलों में घूम सकते हो, किंतु भगवान तुम्हारे हृदय के भीतर हैं। जब तुम वहां उनसे मिलोगे तो तुम पाओगे कि वे सर्वत्र हैं। उनके शब्द मानो मेरी सबसे गहरी उलझनों को सुलझा रहे थे, जिन्हें सुनकर मैं विस्मित रह गया। मैं वैरागी जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को अपने हृदय में ढूंढ रहा था। फिर बाबा ने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे। उनकी काली आंखें शक्ति और तरंगे छोड़ती हुई मानो मेरे मन को पढ़ रही थी। लोग क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, क्या तुम देख नहीं सकते कि वे मृत्यु की राह पर चल रहे हैं? उनका प्रत्येक शब्द एक तलवार की भांति मेरी स्वार्थी आसक्तियों को काट रहा था। तुमने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया है, यह बहुत अच्छा है। वापस मत जाना। ध्यान साधना तुम्हें परम शांति प्रदान करेगी। मैं लगभग एक घंटा बैठकर सुनता रहा। अगले दिन पुनः आने का वचन देकर मैं चल दिया। जब हम पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे तो एक तपस्विनी ने मेरा और उस साधु का अभिवादन किया। उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उनकी लंबी काली चोटी थी। मीराबाई और उनके पति जंगल में रहते और वे टाट वाले बाबा के सभी अनुयायियों के लिए भोजन पकाते थे। उन्होंने तुरंत हमें अपने घर पर निमंत्रित किया। क्या तुम बाबा के विषय में सुनना चाहोगे? उन्होंने पूछा। हाँ, उनके पीछे चलते हुए मैंने कहा। नेपाली साधु ने भी हामी भर दी। बाबा पंजाब के रहने वाले हैं। बचपन से ही उनका मन प्रश्नों से ज्वलंत रहता था। जब उन्होंने अंग्रेजी शासन में भारतवासियों का शोषण देखा तो वो सोचने लगे कि साधु और शास्त्रों से भरे इस देश के पास क्यों इन उत्पीड़नों का कोई हल नहीं है। ज्ञान पिपासा से तड़पते हुए बचपन में ही उन्होंने गुरु की खोज में घर त्याग दिया। पहले वे श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या गए और फिर वे हिमालय के जंगलों में आए, जहां वे अपने गुरु से मिले। गुरु के चरणों में उन्होंने ज्ञान का मार्ग पाया। हम तीनों मिट्टी और घास फूस से बनी एक झोपड़ी के पास आ पहुंचे। मीराबाई ने शिष्टतापूर्वक लकड़ी का दरवाजा खोला और हमें अंदर आमंत्रित किया। बैठने के लिए एक चटाई और कुल्हड़ में जल देते हुए उन्होंने पूछा, क्या मैं आगे बताऊं? हाँ अवश्य। मैंने उनके द्वारा झरने से लाए गए शीतल जल का आनंद लेते हुए कहा। लगभग 16 वर्ष की अवस्था में से बाबा इन्हीं गुम्फाओं में निवास कर रहे हैं। वे केवल जंगली जड़ी बूटियों और फलों पर ही जीते हैं और अपने शरीर को इस बेकार टाट से ढकते हैं। इसीलिए उन्हें टाट वाले बाबा के नाम से बुलाया जाता है। फिर उन्होंने आगे बताया कि बाबा जी ने 15 वर्ष तक एकांत में रहकर अष्टांग योग की साधना को सिद्ध किया है। धीरे धीरे लोगों ने उनकी सिद्धावस्था को पहचाना और उनके पास आने लगे। वे किसी को अपने शरीर का स्पर्श करने या उनके लिए भोजन बनाने नहीं देते। मीराबाई ने एक गहरी सांस ली और विस्मय तथा आदर से उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें लोगों के मन पढ़ते, भविष्य देखते और रोगियों को ठीक करते देखा है। और तो और, जब एक योगी को माइग्रेन का असहनीय सिरदर्द था तो बाबा उसके सपने में आए और उन्होंने मंत्र द्वारा उसके सिर से एक सफ़ेद तरल पदार्थों को निकालकर उसे हमेशा के लिए रोगमुक्त कर दिया। मुझे यहाँ बैठकर अपने सौभाग्य का एहसास हो रहा था। फिर उन्होंने हमारा ध्यान अपने छोटे से मंदिर में रखे बाबा के एक चित्र की ओर आकर्षित किया और हाथ जोड़ते हुए पूछा, क्या आप और जानना चाहेंगे? हमने आतुरता से सिर हिलाया। बाबा घंटों और कभी कभी तो अनेक दिनों तक ध्यान करते रहे हैं। वे सदैव यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं और प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। फिर वे मेरी ओर मुड़ी, तुम कितनी दूर अमेरिका से यहां साधु बनने के लिए आए हो? मैं तुम्हारे साहस का आदर करती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो। विदा होने से पूर्व उन्होंने मेरी हथेली पर एक अजीब सी मिठाई रखी, जो हरे कद्दू को चीनी के पानी में उबालकर बनाई गई थी। मुंह में डालते ही वो तुरंत घुल गई और मेरा मुंह स्वाद से भर गया। मैंने कभी भी वैसी वस्तु नहीं चखी थी। मेरी प्रतिक्रिया देखकर उन्होंने धीरे से कहा, इस मिठाई को पेठा कहते हैं, क्या तुम्हें अच्छी लगी? ये भारत में मेरी पहली मिठाई है। मैंने उत्तर दिया, यह अद्भुत है, किंतु क्या तपस्वी योगी इसे खाते हैं? वो ऐसे मुस्कुराई जैसे एक माँ अपने जिज्ञासु बच्चे को देखकर मुस्कुराती है। तुम्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि योगी क्या क्या खाते हैं। अगले दिन मैं बाबा की गुफा में वापस आया। कुछ समय पश्चात मेरा नेपाली मित्र मुझे टाट वाले बाबा के पास अकेला छोड़कर चला गया, जो उस समय ध्यान में डूबे थे। पूरी रात बीत गई, फिर भी वे हिले नहीं। उनकी शांति को आत्मसात करते हुए मैं भी निकट ही ध्यान में बैठ गया। हिमालय के हरे जंगलों को एक सुनहरी चादर से प्रकाशित करते हुए सूर्य का आगमन हुआ। मैंने दूर ऊंचे पहाड़ों को देखा, जिन्हें अनेक लोग भगवान का धाम मानते हैं। मैं गंगा मैया को निहारने लगा। पहाड़ों से मैदानों तक वो बलखाती हुई जंगलों और घाटियों से बह रही थी, जहां उसके तट पर साधु आराधना कर रहे थे। कुशा से बनी चटाई पर बैठे मैं नीचे घनी बेल बुटियों को देखने लगा और कुछ समय पश्चात मैंने रंग बिरंगे बड़े बड़े सांपों का अपने शिकार की खोज में जंगल में घूमते हुए देखा। मैंने जंगली हाथियों को वृक्षों के पत्ते खाते देखा और कभी कभार हरियाली के बीच घूमते तेंदुए भी दिख गए। मेरे मन में शिकागो के हाईलैंड पार्क का एक चित्र उभर आया, जिसमें कटी घास के समतल मैदान, स्कूल बस में चढ़ते हुए बच्चे और कार से कार्यालय जाते हुए अभिभावक थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ आ पहुंचा था। बाबा की गुफा के निकट अन्य गुफाएं भी थीं, जिनमें अनेक अनेक तपस्वी शिष्य रहते थे, और मैं भी कुछ दिन वहीं रहा। बाबा की गुफा के भीतर दिन रात जलती यज्ञाग्नि के तीक्ष्ण धुएं में सांस लेते हुए मैं स्वयं को शुद्ध होता अनुभव कर रहा था। सीधी कमर किए बाबा 3 से 5 घंटों तक शास्त्राध्ययन करते थे, शेष समय वे ध्यान में लीन रहते। यदि वे रात को विश्राम करते तो प्रातः सूर्योदय से कई घंटे पहले उठकर ध्यान, अध्ययन और योगासनों का अभ्यास करते। तत्पश्चात वे अपनी जटाओं को सिर के ऊपर एक बड़े जूड़े में लपेटकर मुझे अपने साथ लेकर झरने पर नहाने और एक मटका पानी भरने जाते। वापस लौटते हुए वे खाने के लिए जड़ी बूटियां और फल तथा यज्ञ हेतु लकड़ियां एकत्रित करते। एक दिन मैंने उन्हें बड़ी सहजता से एक भारी लट्ठा उठाकर गुफा में ले जाते देखा। एक शाम जब वन पंछियों के कलरव से गूंज रहा था, बाबा ने हमारे नेपाली अनुवादक के माध्यम से मुझे एक अच्छा झटका दिया। हमारी इन गुफाओं में शेष जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हारा स्वागत है, मैं इसके लिए तुम्हें आमंत्रित करता हूं। फिर उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और समाधिस्थ हो गए। उनके शब्द मेरे मन में गूंजने लगे और मैं अपने निर्णय की गंभीरता पर विचार करने लगा। एक सुबह में मैं अपने ध्यान से बाहर आया और सोचा, ऐसे साधु की शरण में इस पवित्र वन में रहना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, किंतु यदि मैं किसी एक गुरु का अनुगमन करने का निर्णय लेता हूं तो मुझे भविष्य में कभी भी अपना मन बदलकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैं एक ऐसे गुरु और मार्ग को ढूंढना चाहता हूं जिन्हें मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकूं। मैंने स्वयं से पूछा कि क्या मुझे विश्वास है कि यही मेरे गुरु हैं और यही मेरा रास्ता है। अनेक क्षण विचार करने के पश्चात उत्तर आया, टाट वाले बाबा के साथ ध्यान करते हुए मैंने गहन आंतरिक अनुभूति और आंतरिक आनंद पाया था, फिर भी मैं अनिश्चित था। मेरे हृदय के अंदर एक लालसा थी, भारत के साधुओं से मिलने, पवित्र धामों की यात्रा करने और विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुभव करने की लालसा। मुझे लगा केवल उसके पश्चात ही मैं अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय ले पाऊंगा। ये विचार कर कि ये एक सही दृष्टिकोण है, मेरा मन शांत हो गया। मैंने सोचा कि टाट वाले बाबा को अपना निर्णय बताने में मुझे अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मैं किसी साधारण मनुष्य से नहीं अपितु अलौकिक शक्तियों वाले एक असाधारण व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूं। इस प्रकार अनेक दिन बीत गए। उनके सान्निध्य में ध्यान करते हुए मुझे शब्दातीत अनुभव प्राप्त हुए। अंततः जब मैं अपने विचार उन्हें बताने लगा, वे पहले से ही अवगत थे। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, उन्होंने वे शब्द कह दिए जिन्हें कहने की मैं योजना बना रहा था। सौम्यता से उन्होंने मेरी आंखों में देखा और अपना हाथ उठा दिया, जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें, ओम तत्सत। यहां पे दूसरे खंड का चौथा अध्याय समाप्त होता है।